ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 19 जम्बू द्वीप का वर्णन श्लोक क्रमांक 7। न जन्म नूनम महतो न सौभगम न वांगन बुद्धिर न कृतिस्तोष हेतु तये द्विशिष्टानपि नो वनो कसस्य चकार सखे वत लक्ष्मणाग्रज। पीछे दोहराइएगा ना, ना जन्म उच्च कुल में जन्म नूनम निसंदेह महतः श्री भगवान का ना ना तो सौभगम सौभाग्य ना ना तो वाक शिष्टाचार पूर्वक बात करना ना ना तो बुद्धि ही तीक्ष्ण बुद्धि ना नहीं आकृति ही शरीर के अंग प्रत्यंग तोष हेतु भगवान के आनंद का कारण तही उक्त समस्त गुणों के द्वारा यत क्योंकि विशिष्टान अस्वीकृत अपि यद्यपि नहा हमको वन ओकसहा वनवासी चकार स्वीकार किया सखे मित्रता से वत हाय लक्ष्मण अग्रजहा लक्ष्मण के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र ने। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। उच्च कुल में जन्म धारण करने शारीरिक सौंदर्य वाक चातुरी तीक्ष्ण बुद्धि या श्रेष्ठ जाति अथवा राष्ट्र जैसे भौतिक गुणों के कारण कोई चाह कर भी भगवान रामचंद्र से मैत्री स्थापित नहीं कर सकता। उनसे मित्रता स्थापित करने के लिए इन गुणों की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा भला हम असभ्य वनवासियों को बिना उच्च कुल में जन्म लिए तथा रूप रंग ना होते हुए और भद्र पुरुषों की भांति बात कर सकने में सक्षम ना होने पर भी अपने मित्रों के रूप में क्यों स्वीकार करते। तात्पर्य श्रीमती कुंती देवी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए उन्हें अकिंचन गोचर कहा है। आ उपसर्ग का अर्थ है नहीं और किंचन का अर्थ होता है इस भौतिक जगत से संबंधित। कोई अपने उच्च पद संपत्ति रूप शिक्षा इत्यादि का कितना भी गर्व क्यों ना कर ले, श्री भगवान के साथ मित्रता स्थापित करने में इनका कोई महत्व नहीं है, भले ही भौतिक आचार विचार में इन गुणों की प्रधानता प्राप्त हो। जिनमें ये समस्त गुण होते हैं उनसे भक्त बनने की आशा की जाती है और वैसा करने पर इन गुणों का सदुपयोग होता है, किंतु जो उच्च जन्म संपत्ति शिक्षा तथा रूप से गर्वित हो उठते हैं जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री, वे दुर्भाग्यवश ना तो कृष्ण भावनामृत की ओर उन्मुख होते हैं और ना श्री भगवान को ही इन भौतिक गुणों की कोई परवाह है। श्री भगवान को तो भक्ति से प्राप्त किया जाता है, भक्त्या माम अभिजानाति। श्री भगवान की सेवा करने के लिए भक्ति तथा उत्कट कामना ही पर्याप्त है। रूप गोस्वामी गोस्वामी ने भी यही कहा है कि भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उत्कंठा ही पर्याप्त है। लौल्यम एकम मूल्यम, चैतन्य भागवत में कहा गया है, खोला बेचा शिव केर देख भाग्य सीमा, ब्रह्मा शिव कांदे जार देखिया महिमा, धने जने पांडित्य कृष्ण नाही पाए, केवल भक्तिर बस चैतन्य गोसाई। जरा खोला वेचर भक्त के परम भाग्य को तो देखो, उसकी महानता को देखकर ब्रह्मा जी तथा शिव अश्रुपात करते हैं। किसी के पास चाहे कितने भी शिष्य संपत्ति धन या विद्या क्यों ना हो, उसे इनसे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्री चैतन्य महाप्रभु तो केवल विशुद्ध भक्ति के वश में होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के परम आज्ञाकारी शिष्य का नाम कोला बेचर श्रीधर था, जिसका एकमात्र काम था केले की छाल के बने पात्र बेचना। उसे जितनी आमदनी होती उसका आधा वह गंगा जी की पूजा में व्यय कर देते थे और शेष आधे से घर का काम चलाता था। कुल मिलाकर उस दरिद्र के पास एक झोपड़ी थी जिसकी छत टूटी थी और जिसमें अनेक छेद थे। वह पीतल के बर्तन नहीं खरीद सकता था, इसलिए वह लोहे के पात्र में जल पीता था। तो भी वह श्री चैतन्य महाप्रभु का परम भक्त था। वह एक ऐसा विशिष्ट उदाहरण है कि बिना किसी प्रकार के धन के भी कोई भगवान का परम भक्त कैसे बन सकता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि कोई भाव भौतिक ऐश्वर्य के माध्यम से श्री कृष्ण अथवा श्री चैतन्य गोसाई की चरण कमल की शरण नहीं प्राप्त कर सकता। वह शरण तो केवल विशुद्ध भक्ति भाव से प्राप्त की जा सकती है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि वह बिना किसी भौतिक लाभ या सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन के भगवान श्री कृष्ण की सेवा दिव्य प्रेम भक्ति से करे, यही विशुद्ध भक्ति है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेनम तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले शन्ते भक्ति विकास स्वामी नामने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सितारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सेवा साधि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, हनुमान जी हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र का, कि अगर किसी का उच्च कुल में जन्म हुआ है या शारीरिक रूप से बहुत सुंदर है या वाक चातुरी है, उसकी बोलने में बहुत दक्ष है, तीक्ष्ण बुद्धि है, उसके उसमें ऐसे कितने हजारों गुण हों, लेकिन वो भगवान रामचंद्र से मैत्री स्थापित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हनुमान जी बताते हैं कि हम असभ्य वनवासी बिना उच्च कुल में जन्म लिए तथा रूप रंग के ना होते हुए सुंदर भी नहीं है और भद्र पुरुषों की भांति बात कर सकने में सक्षम ना होने पर भी, है ना, भद्र अगर वानर हैं तो वो क्या बात करेंगे, है ना, सब भद्र पुरुषों की तरह बात करने में सक्षम नहीं है, फिर भी भगवान श्री रामचंद्र ने हमें मित्रों के रूप में स्वीकार किया। तो शुक्रवार को भगवान श्री रामचंद्र विजयोत्सव, है ना, दशहरा था और उसके उपलक्ष्य में हम भगवान रामचंद्र के बारे में, रामायण के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो ज़्यादातर सभी लोगों ने रामायण के बारे में या भगवान रामचंद्र के बारे में सब लोगों ने सुना है ना, तो ऐसा नया क्या है, है ना, कुछ नया होना चाहिए तभी तो मज़ा आएगा, है ना, वही पुरानी चीज़ें वही सुनना है, है ना। लेकिन रामायण ऐसा है ना, स्वादु स्वादु पदे पदे, जितना हम सुनेंगे जितनी बार सुनेंगे उसमें और रस प्राप्त होगा, है ना, और ज़्यादा टेस्ट प्राप्त होगा। लेकिन उसी को प्राप्त हो सकता है वो टेस्ट जिसको भौतिक जगत में कोई टेस्ट से लेना देना नहीं है। तो भगवान रामचंद्र कौन है, और रामायण जो है उसमें भगवान रामचंद्र, उनके महान महान जो भक्त हैं, उनके चरित्र से हम क्या क्या शिक्षा ले सकते हैं, भक्ति में कैसे प्रगति कर सकते हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो भगवान रामचंद्र हैं वो एक जो साधारण भूल धारणा है, पहले उसको हम लेते हैं कि भगवान रामचंद्र भी एक जो निराकार ब्रह्म है उसकी एक अभिव्यक्ति है, है ना। वास्तव में जो परम सत्य है वो निराकार है, निर्गुण है, और समय समय पर वो एक आकार का रूप लेकर, एक व्यक्ति का रूप लेकर यहाँ पर आता है। तो उसी तरह जब भगवान राम है या कृष्ण है या नरसिंहदेव है, जब जब आते हैं तो वास्तव में उनका जो रूप है वो तो निराकार है, निर्गुण है, लेकिन उनके जो भक्त हैं उनसे आदान प्रदान करने के लिए, भक्त मतलब जो भावुकता के स्तर पर हैं, जिनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों को आदान प्रदान करने के लिए भगवान अपना रूप लेके आते हैं। लेकिन वही जब भक्त ज्ञानी हो जाता है और उसको शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और इस चीज़ को समझ जाता है कि वास्तव में जो ब्रह्म है, वास्तव में जो भगवान है वो क्या है, निराकार है ना, तो ये बहुत बड़ी भूल धारणा है हम देखेंगे। और ये भूल धारणा इतनी सूक्ष्म है, बहुत सारे जो बहुत सारे मतलब अधिकतर, सभी तो नहीं, अधिकतर अगर किसी हम राम भक्त से मिलते हैं और उनसे हम थोड़ा सा टटोलने का प्रयास करते हैं, पूछने का प्रयास करते हैं कि ये जो राम है जिनकी आप पूजा कर रहे हैं वो कौन है, है ना, तो आप देखिएगा बहुत लोगों का उत्तर ये आएगा कि जो राम है वो एक निराकार ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, है ना। फिर उनसे पूछेंगे कि भगवान राम अभी भी हैं या उनका धाम भी है, उनके भक्त भी अभी भी हैं, बोले वो तो निराकार ब्रह्म था, वो अपना धाम निराकार ब्रह्म से धाम का अभिव्यक्ति हुआ और राम का अभिव्यक्ति हुआ, उनके भक्तों का अभिव्यक्ति हुआ, अभी वो सब जाके निराकार ब्रह्म में लीन हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान भगवत गीता में बताते हैं अव्यक्तिम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम बुद्ध्या परम भावम न जानन्तो मम भूत महेश, है ना, कि ऐसे लोग जो समझते हैं कि पहले मैं निराकार था, उसके बाद मैंने अभी एक रूप लिया है और फिर से मैं निराकार हो जाऊंगा, तो वो क्या है, बहुत बड़े मूर्ख है, है ना, बुद्धिमान नहीं है, कि पहले वो निराकार थे अभी साकार हुए और फिर से निराकार हो जाएंगे, तो वो मेरी तो जो दिव्य प्रकृति है उसको जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले हमको जब भगवान और भगवान राम की जो लीलाओं को हम जब पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो पहले हमको ये विश्वास होना चाहिए कि जो हमारे भौतिक बुद्धि है, ये जो भौतिक मन है, ये भौतिक उपकरण है, उनके माध्यम से भगवान की लीला को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। ये जैसे है ना कुएं का मेढक, तो कुएं का मेढक जो है केवल एक जो कुआ है उसी में उसका जीवन निकला है, कुआ कितना बड़ा है, उसमें कितना पानी है, उतना ही जान सकता है। लेकिन जो प्रशांत महासागर से कोई मेढक आया है तो वो समझ नहीं पाएगा कि वो प्रशांत महासागर कितना बड़ा है, उसमें कितना जल है। तो उसी तरह हम हमारे जीवन में जो जितने भी अनुभव हुए हैं, जितने भी भौतिक अनुभव हुए हैं, उसके माध्यम से हम भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत बड़ी भूल धारणा है ना, अप्राकृत वस्तु ना होए प्राकृत गोचर, कि जो आध्यात्मिक वस्तु है या आध्यात्मिक विषय है वो भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं समझा जा सकता। तो भगवान राम की लीला में हम कुछ ऐसे घटना देखेंगे जिससे हमको ऊपरी तौर से लगता है कि ये तो क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, है ना, सीता माँ के प्रति अत्याचार हुआ, है ना, या बाली के प्रति अत्याचार हुआ, है ना। तो इस तरह से क्यों, क्योंकि हम अपनी भौतिक बुद्धि के द्वारा भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही हम भगवान रामचंद्र उनका चरित्र जान सकते हैं। फिर भगवान रामचंद्र का जो चरित्र है वो इतना मधुर है कि हजारों हजारों लाखों सालों से है ना उनके बारे में वर्णन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग बोर नहीं हुए है ना, या बासी नहीं पड़ा है, अरे ठीक है सुन लिया। कोई कितनी भी अच्छी है ना बहुत हिट मूवी हो है ना, कोई कितनी भी हिट हो, आप कितनी बार देखेंगे उसको, या जिन्होंने अभी भी कुछ देखते होंगे या पहले देखी होगी तो कितनी बार देख पाएंगे। कोई भी हिट, कोई ब्लॉकबस्टर, कितनी दो बार तीन बार पैसे देके भी बिठाएंगे तो देखेंगे, देख ही नहीं पाएंगे, उब जाएंगे है ना। या कोई नॉवेल है ना, हैरी पॉटर या क्या चेतन भगत वो नॉवेल पढ़ लिया, या न्यूज़पेपर, अभी आज से 10 दिन पुराना जो न्यूज़पेपर है आपको न्यूज पता है 10 दिन पहले क्या हुआ था, वही न्यूज आप फिर से देखिए तो देखने की इच्छा होगी, नहीं होगी। तो ये जो मूवीज हैं या मैगजीन्स हैं या न्यूज़पेपर है ना, कितनी कुछ बार दो तीन बार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जो राम कथा है वो तो जितनी बार सुनते हैं है ना, जैसे जैसे सुनते हैं ऐसा लगता है कि एक रोमांच रहता है कि आगे क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला है ना, लेकिन पता है आगे ये होने वाला, फिर भी सुनने की बार बार इच्छा होती है ना। जैसे भगवान राम का राज तिलक होने वाला है ना, महाराज दशरथ है, उन्होंने पूरे अयोध्या में घोषणा कर दी है, पूरे अयोध्या की जो राजमार्ग है, जो घर है, सबको सजा दिया गया है ना? और सब जगह ये बात फैल गई है कि जो राजकुमार है रामचंद्र उनका राज तिलक होगा। तो अभी पता है उसके आगे क्या होगा, रात में जो मंथरा है वो कैकेयी के पास जाएगी और कैकेयी की जो बुद्धि है वो चेंज कर देगी, ये भी पता है कि आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी क्या है लोग उसको रामायण को बार बार पढ़ रहे हैं। क्यों है, क्योंकि आनंद चिन्मय रस, क्योंकि जो उसका जो आनंद है ना, जो उसमें जो लीलाएं हैं वो क्या है, आध्यात्मिक स्तर पर है। तो जितनी बार हम पढ़ते हैं उतना हम उसकी गहराई को जान सकते हैं, उसका जो विस्तार से उसको डिटेल्स को जान सकते हैं है ना। तो ये जो रामायण है और ऐसे हम देखते भी हैं महान भक्तों के जीवन में है ना, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री जो श्री कृष्ण है जो कलयुग में अवतीर्ण हुए, भगवान चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा में जाते हैं तो वहाँ पर एक ब्राह्मण से मिलते हैं है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग लोग उनको निमंत्रण देते हैं है ना, तो एक ब्राह्मण है वो उनको निमंत्रण देते हैं और चैतन्य महाप्रभु उनके घर जाते हैं, और ब्राह्मण तो अभी प्रसाद का समय हो गया तो ब्राह्मण तो कुछ बनाए नहीं, तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि आपने कुछ बनाए क्यों नहीं, आपने समय दिया था इसमें तो बनाए क्यों नहीं। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि अभी वो जो लक्ष्मण है लकड़ी लेके नहीं आए, अभी जंगल से लकड़ी लेके नहीं आए हैं, तो जब वो लकड़ी लेके आ जाएंगे तो मैं बना दूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु इस चीज़ को देखते हैं कि ये वास्तव में ये राम भक्त हैं, तो कुछ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। फिर किसी तरह से वो ब्राह्मण जो है उसका अपना पाक बना देते हैं और चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद परोसते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु अगले दिन आते हैं, फिर वो ब्राह्मण बहुत दुखी थे, दुखी ऐसे बैठे हुए थे और उन्होंने कुछ खाया नहीं है ना, और चैतन्य महाप्रभु को फिर से निमंत्रण दिया तो बोलते क्या आप दुखी क्यों हैं है ना। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि मैं बता नहीं सकता मेरी व्यथा क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं बताइए क्या है, बोले मैं रामायण में देखा कि ये कैसे हो सकता है कि जो सीता माँ है जो परम पवित्र है ना जगत जननी है, उनको रावण कैसे स्पर्श कर सकता है, जब मैंने ये बात सुना कि रावण ने सीता माँ को स्पर्श करके ले गया, तब से मुझे, मैं बहुत दुखी हूँ कि रावण ने कैसे किया है, है ना। अभी क्या होगा आगे, सीता माँ वापस आएंगी नहीं आएंगी, क्या होगा, रावण लेके चला गया। तो अभी रावण, ये तो घटना कब की है, चैतन्य महाप्रभु जब 500 साल पहले आए, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु समझाने का प्रयास करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, बाद में ये, तो ब्राह्मण इसको स्वीकार नहीं करते हैं, है ना। फिर चैतन्य महाप्रभु आगे चल के एक पुराण लेके आते हैं, उसमें समझाते हैं कि वास्तव में रावण ने सीता का अपहरण नहीं किया था, जो माया सीता है उनका अपहरण किया था, ना? तो वो जो ब्राह्मण है उससे, तो कहने का मतलब क्या है कि वो राम कथा पढ़ नहीं रहे, वो राम कथा के अंदर ही है, है ना। जब लीला पढ़ रहे हैं, इसीलिए आप देखेंगे ट्रेडिशनली पारंपरिक कि रात में, जब अभी तो लाइट आ गई है, है ना, तो लाइट है तो रात में भी निशाचरों की तरह लोग जागते हैं। तो पहले लाइट, अभी अंधेरा हो गया है, सब लोग घर में बैठेंगे और रामायण के ऊपर चर्चा की जाएगी, है ना, या कृष्ण लीला उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। अभी तो टाइम ही नहीं है, कोई अपने फ़ोन पर कार्टून देख रहा है, कोई अपने फ़ोन पर टीवी सीरियल देख रहा है, कोई न्यूज़ देख रहा है, किसी को समय ही नहीं है रामायण सुनने का। तो पहले घर के सब लोग बैठते थे और रामायण सुनते थे, और ऐसे अलग अलग ड्रामा भी होते थे, है ना, लीलाएँ होते थे। एक्चुअली वो नाटक नहीं होते थे, उसको ऐसा नाटक नहीं बोलते, उसको बोलते थे रामलीला, है ना, रामलीला। जैसे दिल्ली में मैदान भी रामलीला मैदान, है ना, और अयोध्या में भी ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर पूरे 12 महीने रामलीला चलती है, है ना, 12 महीने रामलीला। और जो चरित्र है, है ना, कोई लक्ष्मण है, कोई हनुमान है, कोई राम है, तो उनको उसी नाम से लोग जानना प्रारंभ कर देते हैं, है ना। और वो इस तरह से रामलीला करते हैं कि वो उस चरित्र में ही है। जैसे मैं सुन रहा था एक प्रवचन में, तो परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज बताते हैं कि ऐसे रामलीला होती है, और जो मेघनाथ ने जो लक्ष्मण है उनको लक्ष्मण शक्ति से आक्रमण किया, और जो लक्ष्मण है वो घायल हो गए, है ना, अचेतन हो गए। तो जो रामलीला हो रही थी उसमें वास्तव में वो अचेतन हो गए, मतलब वो ड्रामा नहीं चल रहा है, वो उसमें अचेतन ही हो गए, है ना। और हमको क्या होता है, रामलीला सुनते समय नींद आती है, है ना, तो हमारी क्या स्थिति है, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भगवान की लीलाएं हैं वो केवल एक स्टोरीज नहीं है, कहानियां नहीं है, मन को बहलाने वाली चीजें नहीं है, है ना, ये वास्तव में सत्य है, है ना। और जो हम अपना जीवन जी रहे हैं भगवान की सेवा के अलावा, वो क्या, एक सपना है। एक होता है दिन का सपना, एक होता है रात का सपना, है ना। जैसे रात के स्वप्न में आप सो रहे हैं, सपना आया कि कोई शेर पीछे भागा, तो डर लगता है। और ऐसे जब उठते हैं आप देखेंगे पसीना आ गया है, हार्ट बीट बढ़ गई है, है ना। तो जब सपने में जब शेर भागा पीछे, तो वो हमको क्या लग रही है, वास्तविकता लग रही है। लेकिन जैसे हम उठ जाते हैं हमको लगता है हाँ ठीक, अभी सपना खत्म हो गया। ऐसे किसी को एग्जाम के सपने आते हैं, है ना, एग्जाम के सपने आएंगे और उठेंगे, अरे अभी तो मैं पास हो चुका। तो वो दिन में सपना देख रहे हैं, वो सपना कितने देर का है, 10 से 15 मिनट का है, आधे घंटे का है, वो सपना खत्म हो गया। और जो दिन में चल रहा है वो थोड़ा बड़ा सपना है, है ना, 20 घंटे का, मतलब 16 घंटे का है, या 16 साल का है, या 60 साल का है वो सपने ही, है ना। जैसे सपने में जो सुख दुख होता है उसको हम अपना मान लेते हैं, उसी तरह जो दिन का सपन देख रहे हैं उसमें जो सुख दुख हो रहा है उसको हम अपना समझ रहे हैं। तो भगवान की सेवा के अलावा जो भी हमारा जीवन है वो या तो दिन का सपना है, वो रात्रि का सपना है, उसके अलावा कुछ नहीं। और ये जो भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान रामचंद्र की लीलाएं हैं, वो वास्तव में रियलिटी है, वो वास्तव में वो सत्य है, है ना। उसके अलावा सब क्या है, जैसे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं वायसम तीर्थम, जितने भी जो कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, मैगजीन्स हैं, अखबार है, वो क्या है, कौए के तीर्थ स्थान के समान है। इसका अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। तो जब चैतन्य महाप्रभु रामचंद्र विजय उत्सव मनाते थे तो उस समय भी एक रामलीला करते थे और चैतन्य महाप्रभु उसमें हनुमान का रोल करते थे। और फिर भगवान रामचंद्र के जो चरित्र है उससे हम कुछ एक या दो लीलाएं लेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे अगर हम भौतिक दृष्टिकोण से इन लीलाओं को समझेंगे तो हम विचलित हो जाएंगे, शास्त्रों को गलत समझेंगे, है ना। तो जैसे एक मैंने सुना था, एक कोई माताजी स्त्री थे अभक्त, उन्होंने बोला कि मेरा जो भाई है वो रावण जैसा होना चाहिए, कम से कम रावण ने अपनी बहन की बहन के लिए प्रतिशोध तो लिया ना, बहन का अपमान किया गया तो बहन के लिए उसने कुछ तो कदम उठाया, और मेरा जो पति है वो राम जैसा नहीं होना चाहिए कि किसी की अपवाह से या किसी ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया और त्याग दिया, है ना। तो भाई कैसा होना चाहिए, रावण जैसा। तो जो ऐसे सुपर खां है उनको रावण जैसे ही भाई मिलेंगे, है ना, आधुनिक सुपर खां। तो वास्तव में रावण ने कोई रक्षा के उद्देश्य से या प्रतिशोध के उद्देश्य से सुपर खां, मतलब प्रतिशोध के उद्देश्य से राम के साथ, मतलब राम आक्रमण करना नहीं चाहा। तो जैसे रामायण में आता है जब सुपर खां के नाक काट दी गई तो सुपर खां पहले अपने जो भाई हैं खर और दूषण उनके पास जाते हैं और बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो खर दूषण कई हजार अपने सैनिकों को लेकर जाते हैं और भगवान राम कुछ ही समय में उनको ख़त्म कर देते हैं। तो उसमें उन सैनिकों में एक सैनिक होता है, उसका नाम होता है अकंपन, है ना। तो जो अकंपन होता है वो दौड़ते दौड़ते जाता है लंका और पहुंचता है रावण के पास में और वो बताता है जो भगवान राम, जो राम है वो कोई साधारण पुरुष नहीं है और आपके जो भाई हैं उनके इतने सैनिक हैं उनको कुछ ही समय में उन्होंने ख़त्म कर दिया, तो ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, इनसे हमको कभी भी मुठभेड़ नहीं लेना है। तो जो रावण है उसके हृदय में क्या हो जाता है, डर गढ़ जाता है कि राम के साथ तो मुठभेड़ नहीं लेंगे। तो वो जो अकंपन है वो पहले से सब कुछ बता देता है। उसके बाद में फिर सुपर खां आते हैं और फिर सुपर खां ऐसे रोती है, बिलखती है, है ना, और बोलती है कि मेरा अपमान कर दिया गया, ऐसे एक वनवासी है राम और लक्ष्मण, है ना, और लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दिया, आप कुछ कैसे भाई हो, है ना, मेरी रक्षा भी नहीं कर सकते, गुस्सा दिलाने का प्रयास करते हैं। तो रावण को पता था कि राम से मुठभेड़ नहीं लेना है, तो रावण कुछ भी उत्तर नहीं देता है। अभी सुपर का सोचती है कि मेरे अपमान का तो ये बदला नहीं ले रहा है, लेकिन अगर मैं सीता की सुंदरता का वर्णन करूंगी तो ये रावण जरूर उसके लिए फिर वो जरूर वहाँ पे जाएगा। तो वो जो सुपर का है क्या बोलती है कि मैं वास्तव में वो राम लक्ष्मण के पास नहीं गई थी, वो तो सीता के पास गई थी, सीता को ला के यहाँ लंका छोड़ना था, लेकिन उन्होंने नाक काट दिया, आपके लिए मैं इतनी सुंदर स्त्री लेके आ रही थी। तो जब वो रावण सुनता है, वो जो उसके अंदर जो लस्ट, है ना, काम वासना आती है उसकी वजह से वो वहाँ पर जाता है कि मैं सीता का अपहरण करके लेके आता हूँ। और जो रावण है कैसे जाता है, साधु के वेश में जाता है, है ना, सैफ्रॉन कपड़ों में जाता है, केसरिया वस्त्र में जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जो केसरिया जो वस्त्र है उसका किस तरह से गलत उपयोग किया गया है त्रेता युग में, और अभी भी ऐसा हो रहा है ना? तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों का धीरे धीरे जो अध्यात्म है उससे विश्वास उठ रहा है ना। तो ये अचंभे की बात नहीं है क्योंकि ये तो त्रेता युग से हो रहा है ना। अगर कोई भक्त अभक्त है, असुर है और भक्त के वेश में आता है और कुछ गड़बड़ करके जाता है तो उसमें आश्चर्य होने की बात नहीं है, वो बहुत पहले से हो रहा है और रावण ने ऐसे ही किया। और रावण की ही परंपरा को फॉलो करते हुए आजकल जो कथा कथित जो साधु हैं वो इस तरह से केसरी वस्त्र धारण करते हैं और लोगों को चीट करते हैं। ऐसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद जब बचपन में अपने घर में थे तो उनके पड़ोस में एक व्यक्ति था जो रोज केसरी वस्त्र पहनता था और बाहर जाता था कलकत्ता में और भिक्षा मांगता था, घर पर आता था अपने वस्त्र चेंज करता था और पैंट शर्ट में आ जाता था और अपना उसका जीविकोपार्जन चल रहा था। तो जब श्रील प्रभुपाद ने ऐसा देखा कि साधु ऐसे होते हैं और उन्होंने क्यों पहना है केसरी वस्त्र, अपने पेट पालने के लिए, तो सारे साधु ऐसे ही है ना। तो ये रावण से ये परंपरा चली आ रही है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है कि भाई रावण जैसा होना चाहिए क्योंकि बहन की रक्षा किया, तो बहन के लिए नहीं, वो आउट ऑफ लस्ट है ना, काम वासना के कारण वो सीता का अपहरण करने के। फिर ये आरोप लगाया जाता है ना, और कि वैदिक शास्त्रों में और रामायण में हमेशा से जो स्त्रियां हैं उनको एक निम्न दर्जा दिया गया है ना, हमेशा से बांध के रखा गया है, बहुत सारी पाबंदियाँ लगा के रखी गई है ना, और बहुत सारा अत्याचार हुआ है ना। और उसका उदाहरण लोग देते हैं कि जैसे भगवान रामचंद्र हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए है ना, कि मेरी जो प्रतिष्ठा है उस पर कोई दाग ना आए है ना, मेरा जो नाम है उसमें कोई कलंक नहीं आए, उसकी वजह से भगवान राम ने भी एक ऐसे व्यक्ति का कहना मान लिया है ना, मतलब उसका कोई ठोस कोई प्रमाण नहीं है, उस धोबी ने पर इतना बोला कि मैं राम जैसा नहीं हूँ है ना। धोबी इसमें हम पढ़ सकते हैं वाल्मीकि रामायण में, इस धोबी है उसकी जो पत्नी है वो गई होती है अपने मायके, तो वो लौट के आ रही होती है तो बहुत तेज़ बारिश होती है और जो नदी में उफान आ जाता है, तो नदी में उफान की वजह से वो नदी क्रॉस नहीं हो पाती है। तो नदी के उस पार एक किसी कुटिया में वो रुकती है और सुबह आती है, तो धोबी है उसका परित्याग कर देते हैं और धोबी बोलते हैं कि मैं रामचंद्र जैसा नहीं हूँ है ना, कि इतने समय तक कोई पराय पुरुष के घर अगर स्त्री रहे तो मैं उसको स्वीकार कर लूँ है ना, तो तुम एक रात दूसरी जगह रुकी हो इसीलिए मैं तुमको त्याग करता हूँ। तो ये उदाहरण और ऐसे बहुत सारे और भी उदाहरण हैं, उससे लोगों के मन में ये डाला जाता है कि शास्त्र जो है हमको पिछड़ा बनाते हैं है ना, शास्त्र पिछड़े लोगों के लिए, तो इसीलिए अभी क्या होना चाहिए, इक्वल राइट्स है ना, समानता का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों की वजह से और शास्त्रों की वजह से भारत पिछड़ा हुआ है ना, शास्त्रों की वजह से जो स्त्रियाँ हैं वो पिछड़ी हुई हैं क्योंकि वहाँ पर इतना शोषण हुआ है, तो इसीलिए शास्त्रों को हमको भी रिजेक्ट कर देना चाहिए। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर जो मनु संहिता है उसको जलाया गया। तो अभी हमारा देश का सरकार अभी रिकॉर्ड हो रहा है, कहीं पहुंच सकता है, सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा है कि जो शास्त्र है मनु संहिता है उसको जलाया जा रहा है, उसमें कोई परवाह नहीं, अच्छा है जलाओ उसको। रामायण तो क्या है, ये मानने की नहीं, ये तो सब लोगों को शोषण करने के लिए। तो अभी इस वृत्तांत को कैसे समझा जाए है ना, कि भगवान राम ने क्या उनको अपना प्रतिष्ठा चाहिए था कि मेरी प्रतिष्ठा पे दाग नहीं लगना चाहिए इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। तो हम देखेंगे, वाल्मीकि मुनि बताते हैं और आप पढ़ेंगे इसमें से, तो जो संवाद आता है भगवान राम और सीता और लक्ष्मण के बीच में, उन्होंने क्यों ऐसा इस तरह से निर्णय लिया है ना। तो अभी प्रश्न आता है कि क्या भगवान राम को अपनी ख्याति अपने कुल की परंपरा से इतना लगाव था कि थोड़ा सा भी कुछ कलंक आ गया इसीलिए पत्नी को त्याग दिया, मतलब बहुत मान सम्मान की बहुत इच्छा थी भगवान राम को। मान सम्मान की इच्छा, तो इसीलिए वो तो राजा है, और किसी व्यक्ति ने बोला तो उसको दबा देते, उसको बताते देखो अभी अग्नि परीक्षा भी हुआ, तो उसको नकार भी सकते थे। तो भगवान को मान सम्मान चाहिए था या ख्याति चाहिए था, ऐसा लोग बोलते हैं। तो हम देखते हैं किसी व्यक्ति के पास जो ख्याति है वो किससे आती है, पैसे, मतलब भौतिक जगत में जो ख्याति है, पैसे हैं या परिवार है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, जो से आती है। तो एक राजा है, उसके पास सब कुछ है, सारा ऐश्वर्य है, लेकिन उसकी पत्नी नहीं है, तो उसको ख्याति आएगी, ख्याति होगी उसको। अगर इसको हम तर्क से समझें कि उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया, सब कुछ है लेकिन पत्नी नहीं है, तो उसकी क्या ख्याति होगी, कोई ख्याति नहीं है, करेक्ट। और अगर भगवान को ख्याति की इतना भी था, अपना प्रसिद्धि की इतनी ही उनको चिंता थी, तो दूसरा विवाह कर सकते थे। तो भगवान राम ने बाद में क्या किया, अश्वमेध यज्ञ किया, है ना। अश्वमेध तो कोई भी अनुष्ठान है, कोई भी यज्ञ है, तो उसमें पति और पत्नी दोनों का होना आवश्यक है। तो अभी अनुष्ठान कर रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते थे, अनुष्ठान करना है इसीलिए मुझे विवाह करना पड़ रहा है, मेरी इच्छा तो नहीं है लेकिन कोई अनुष्ठान करना है इसीलिए मुझे विवाह करना है। लेकिन भगवान राम ने ऐसा भी नहीं किया, भगवान राम ने क्या किया, सोने की सीता जो है वो बनाए, और जो सोने की सीता है उनको अपने पास में बिठाए। तो इससे उन्होंने पूरे संसार में ये भी बताया कि ऊपरी तौर से उन्होंने सीता उनको त्यागा है, लेकिन वो पवित्र है, क्योंकि अनुष्ठान जो हो रहा है या जो यज्ञ हो रहा है उसमें हर चीज़ बहुत ही पवित्र होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी कुछ अपवित्र है तो वो जो अनुष्ठान है या यज्ञ है वो क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, थोड़ा सा भी कुछ मिस्टेक हो गई। तो अगर जो सीता है उनमें थोड़ी सी भी अशुद्धता होती तो वो सोने की जो सीता है वो बना के भगवान राम नहीं रखते वहाँ पर। तो भगवान राम बताना चाहते हैं कि सीता मैया जो है वो पवित्र है, परम पवित्र है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनको वो त्याग करना पड़ा, है ना। और हम देखते हैं जब भगवान राम अपने पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में आते हैं, श्री कृष्ण के रूप में आते हैं, तो एक युद्ध होता है, श्री कृष्ण और भौमासुर उनके बीच में युद्ध होता है। और भौमासुर ने क्या किया था, 16,000 राजाओं को बंदी बना दिया था, और उनकी जो 16,000 राजकुमारियां था उनको भी बंदी बना दिया था, है ना। तो भगवान राम श्री कृष्ण है, उन्होंने भौमासुर का वध किया और जो राजा है उनको छुड़वाया। अभी जो राजकुमारियां हैं, क्योंकि वो बहुत समय से उस राक्षस के निगरानी में थे, तो अभी उनसे कोई विवाह नहीं करेगा, है ना। तो वो जो श्री कृष्ण है, जो स्वयं श्री राम है, अगर उनको ख्याति का इतना ही है, मान सम्मान का इतना ही है, तो उनको स्वीकार नहीं करते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने वो 16,000, और उन्होंने क्या बोला राजकुमारियों ने, अब भागवतम में पढ़ेंगे कि आप मुझे दासियों के रूप में स्वीकार करो, मेड सर्वेंट, रानियों के रूप में नहीं, दासियों के रूप में स्वीकार करो। श्री कृष्ण ने क्या किया, दासियों के रूप में नहीं, उनको अपनी पत्नी पटरानी, है ना, उसके रूप में स्वीकार किया। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि भगवान राम वो है कठोर है या निर्दयी है या किसी के बात के बहकावे में आकर उन्होंने ऐसा किया या किसी पर अत्याचार किया। समस्या क्या है कि हम शास्त्र का एक बहुत छोटा सा भाग पढ़ते हैं और उससे निष्कर्ष निकाल देते हैं। जैसे उसको बोलते हैं अर्ध कुकुट न्याय, जैसे मुर्गी है, एक मुर्गी है वो सोने के अंडे दे रही है, तो जो सोने के अंडे दे रही है तो उसके मुख से उस खिलाना पड़ता है, तो अच्छा है जो मुख को काट देते हैं और वो सोने के अंडे देती रहेगी, तो उसको काटने से तुम अंडे नहीं देगी। तो उसी तरह से जो शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं तो हमारी जो पहले से जो चेतना है उसके आधार पर शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो जो हमको तर्क संगत लगता है उसको हम स्वीकार करते हैं, और जिसको तर्क संगत नहीं लगता है उसको अस्वीकार कर देते हैं। तो भगवान को ऐसे कोई ख्याति की ऐसी कोई इच्छा नहीं है, वो हम देख सकते हैं। फिर अभी ख्याति की इच्छा नहीं है, मान सम्मान की इच्छा नहीं है, तो भी फिर त्यागना नहीं चाहिए ना? एक पति धर्म जो है उसको निभाना चाहिए, तो वो भी भगवान राम ने उसको पूरा नहीं किया, उसका उसको भी ओवरकम किया। तो जैसे अभी शास्त्रों को समझने के अलग अलग स्तर हैं, उसको हम जब गहराई से समझेंगे तब समझ आएगा। जिसके मन में पूरा भोग भरा हुआ है, जिसको पूरे अपने जीवन में पैसा 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 दिख रहा है, वो शास्त्रों को नहीं समझ पाएगा। तो उसके लिए क्या है, थोड़ा जो चेतना है थोड़ा शुद्ध होना चाहिए। अगर वो चेतना शुद्ध नहीं है तो वो जो शास्त्रों की जो जटिलता है उसको हम समझ नहीं पाएंगे। तो एक होता है, एक परिस्थिति होती है नैतिक और अनैतिक, और एक परिस्थिति होती है नैतिक और नैतिक। तो जब नैतिक और अनैतिक होती है तो डिसाइड करना बहुत आसान होता है कि नैतिकता को पालन करना है और अनैतिकता को छोड़ना है। लेकिन जब परिस्थिति होती है नैतिक और नैतिक, तो किस नैतिक को पालन किया जाए, किसको पालन नहीं किया जाए, वो बहुत बड़ी दुविधा होती है ना। जैसे मान लीजिए चोरी करना है ना, और सत्य बोलना, तो सत्य बोलना एक तरह से नैतिकता है और चोरी करना एक अनैतिकता है। तो क्लियर है, सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना, ठीक है। अभी दो नैतिकता है ना, कि राजा का भी धर्म निभाना है और पति का भी धर्म निभाना है, अभी दोनों साथ में निभाना है। तो अभी कैसे किया जाए, दोनों को सही करना है ना। तो उसको लोग जब प्रमाणिक शास्त्रों से नहीं सुनते हैं, प्रमाणिक शास्त्रों से पढ़ते नहीं है ना, प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से नहीं सुनते हैं, तो उनको वो अत्याचार लगता है ना। तो जो राजा है, राजा का कर्तव्य है कि किस तरह से अपनी जो प्रजा है उसको गाइड करे धीरे धीरे भगवत धाम ले जाने के लिए, है ना। तो राजा क्या होना चाहिए, एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए, एग्जेम्पलरी होना चाहिए, है ना। समय आने पर अगर उसका जिससे इसने भी है ना पारिवारिक लगाव भी है, तो उसको छोड़ने के लिए वो तैयार हो जाना चाहिए, राजा ऐसा होना चाहिए। आजकल के जो मतलब राजा नहीं है, सरकार है, उनके ऊपर इतने केस हो जाएंगे, है ना, इतने स्कैंडल हो जाएंगे, इतना चारे घोटाले हो जाएंगे, लेकिन अपनी जो कुर्सी है उसको छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो जो आदर्श राजा कैसे होता है, कैसे अपनी प्रजा को गाइड करता है, है ना। तो राजा को प्रजा को गाइड करना है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और आध्यात्मिक उन्नति में जो एक सबसे बड़ी जो बाधा है वो क्या है, भौतिक आसक्ति है। और जो भौतिक आसक्ति है उसका जो एक तरह से जो केंद्र है वो क्या है, घर है, पति पत्नी बच्चे वो है। तो अगर राजा ही अपने घर से अपनी पत्नी से आसक्त होगा तो प्रजा कैसे सीखेगी। तो जैसे बोलते हैं ना, सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, है ना, कि थोड़ा भी हल्का भी कलंक नहीं होना चाहिए। तो राजा को स्थापित करना है एक गुण, क्या है, वैराग्य, कि वो अपने राज्य से अपने घर से किसी से भी वो अटैच नहीं है, किसी से भी आसक्त नहीं है, और समय आने पर उसको भी वो छोड़ सकता है, अगर जरूरत पड़े तो उसको भी छोड़ सकता है, है ना। तो वो आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भगवान राम ने वो जो वैराग्य है ना, अगर भगवान राम मना भी कर देते, क्योंकि एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है ना, क्योंकि अग्नि परीक्षा हुई है और ये सबको पता है, और धोबी को चुप करा सकते थे। तो भगवान राम अगर ऐसा करते तो बाकी लोग भी, जो बाकी प्रजा है, वो भी अपने भोग को किस तरह से जस्टिफाई करती, देखो भगवान राम है ना, भगवान राम भी कैसे अटैच्ड है ना, भगवान राम भी कैसे आसक्त है, तो हम भी मतलब राजा का उदाहरण लेकर वो अपने भोग को जस्टिफाई करते, इसीलिए जो राजा है उसको अब जो वैराग्य है उसको प्रस्तुत करना होगा, है ना, बताना होगा, इसीलिए उन्होंने जो राजा का धर्म है उसको स्वीकार, उसको अपनाया, है ना। तो जिस तरह से ऐसे कोई दुर्भावना नहीं थी, जैसे हम देखते हैं कि जो महाराज दशरथ हैं उन्होंने भी भगवान रामचंद्र को, है ना, वनवास दिया, तो भगवान जो दशरथ है उनके कोई दुर्भावना नहीं है, वो एक परिस्थिति की बस, है ना। तो जो पूरी रामायण है उसमें जो मूड है, उसमें जो भावना है वो क्या है कि हमारे अधिकार क्या है उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करना है, कुछ उच्च उद्देश्य के लिए अगर हमको बलिदान भी करना पड़े तो उसके लिए तैयार रहना है। तो वो पूरी रामायण है, पूरी रामायण में वो पूरा मूड है ना, कि आजकल लोग क्या है, राइट्स, ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड राइट्स, वुमेन राइट्स, सबको अधिकार चाहिए, ये अधिकार, ये अधिकार, ये अधिकार, ये अधिकार, है ना। तो उस समय अधिकार की बात नहीं होती थी, उस समय क्या है, अगर किसी उच्च उद्देश्य के लिए अगर कुछ हायर प्रिंसिपल को स्थापित करना है, अगर हमें उसका बलिदान भी करना पड़े अपना, तो उसके लिए तैयार रहना है ना। और ये हम देख सकते हैं कि जैसे जो दशरथ महाराज हैं, जब भगवान राम को देश निकाला, वैनिश करते हैं, तो भगवान राम कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। जैसे रामायण में आता है कि जब कैकेयी जो है दशरथ को बताती हैं कि मैंने आपकी रक्षा किया था एक युद्ध में और दो वरदान मांगे थे, अभी उसका समय आ गया है, तो एक तो जो भरत है वो राजा बने और जो राम है वो 14 वर्ष के लिए वनवास है। तो जो दशरथ महाराज है वो एकदम से बहुत ज़्यादा विदीर्ण हो गए, अचेतन हो गए। अब जो रामचंद्र है उनके पास खबर पहुंचती है और रामचंद्र जो है अपने जो महल है उससे आते हैं दशरथ महाराज के महल में, है ना। और बीच में गैलरी था, है ना, बीच में एक परांडा था, उसमें सब जोर जोर से नाच रहे हैं, है ना, भगवान रामचंद्र की जय, अयोध्यापति भगवान रामचंद्र की जय। तो जो रामचंद्र हैं उनको इस तरह से शांत करते हैं और वो जो दशरथ महाराज के कक्ष में जाते हैं और जब वो देखते हैं ऐसी घटना हुई है और वो पूछते हैं कि क्या क्या हुआ, और जब उनको पूरा पता चलता है तो भगवान राम के चेहरे पर या उनके मन में थोड़ा सा भी कुछ भी विक्षोभ नहीं होता कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, मुझे मिलना चाहिए। आजकल सबसे ज़्यादा कोर्ट केस किस में होते हैं, भाई भाई के झगड़े में होते हैं, जमीन के ऊपर होते हैं, है ना, सब अपना अधिकार चाहते हैं ना, ये अधिकार, ये अधिकार, ये अधिकार। तो वहाँ अधिकार की बात नहीं हो रही, भगवान राम बोल सकते थे ये कोई डॉक्यूमेंटेड तो है नहीं कि आपको वरदान देने थे और मैं तो मेरी सौतेली माता ने दिया है, मेरी माँ ने थोड़ी बोला है, तो मैं तो राजा बन के रहूँगा, ये तो मेरा अधिकार है। तो ये अधिकार की बात नहीं है। तो भगवान राम जब लौटते हैं फिर उसी बरांडे से फिर जाते हैं और जो सारे अयोध्यावासी हैं फिर भगवान रामचंद्र की जय, भगवान रामचंद्र की जय। तो जब भगवान राम अंदर गए थे और जब बाहर आए तो उनके चेहरे पे कोई भी अंतर नहीं है। हमारे साथ अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए, हमारी संपत्ति कहीं किसी ने लूट लिया, है ना, घर में कुछ कर दिया, चोरी हो गई या कुछ, तो हम तो बहुत ऐसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना, कुछ समझ में नहीं आता, माला भी नहीं होती, कुछ भी नहीं। लेकिन भगवान रामचंद्र के चरित्र कुछ शांत है ना, एकदम सागर की तरह, एकदम सागर का जो गहराई में जो शांत गंभीरता होती है उसी तरह से भगवान राम कोई चेंज नहीं है। फिर उसी तरह से हम देखते हैं सेक्रीफाइस बलिदान, तो भगवान राम बोलते हैं कि मैं वनवास जा रहा हूँ, तो जो सीता माँ है बोलती मैं भी आपके साथ चलूँगी, है ना। तो अगर हम देखें आजकल के जो वुमेन्स राइट्स के हिसाब से, है ना, स्त्रियों को सारे अधिकार मिलना चाहिए, तो उनको तो 14 वर्ष का कोई वनवास उनको तो नहीं मिला है और वो तो राजघराने में बहुत ही जो आरामदायक कंफर्ट्स है ना उसमें उनका पालन पोषण हुआ है, तो मैं साथ में क्यों जाऊँ। तो वहाँ पर ये नहीं है, वो लोग मेरे लिए धर्म क्या है, मेरे लिए कर्तव्य क्या है, पहले मन में ये आता था लोग, मन में आजकल क्या आता, अधिकार। तो कभी कभी भी हमारे मन में कोई हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति होती है विकट परिस्थिति, तो हमें मेरे लिए इस परिस्थिति में मेरा कर्तव्य क्या है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, मेरे साथ ऐसा हो गया है, इसने ऐसा कर दिया है, उसके लिए बस रोते रहना। तो सीता माँ तुरंत तैयार हो जाती है, जबकि उनको तो ऐसा वनवास नहीं है। तो जो लक्ष्मण है वो भी राम और सीता उनकी रक्षा के लिए वो भी जाने को तैयार हो जाते हैं। फिर भरत है, तो भरत बोल सकते थे मुझे तो अपने आप ही मिल गया राज, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो मेरा किसी से द्वेष नहीं है, बड़े भाई से भी द्वेष नहीं, वो तो अपने आप बाय द विल ऑफ प्रोविडेंस किस्मत से राज मिल गया, अभी मैं राज्य कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं, उन्होंने भगवान राम की जो खड़ा हुन है उसको रख। तो कहने का मतलब क्या है, पूरी जो रामलीला है उसमें क्या है, मुझे क्या मिलेगा वो साइड में है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, वो प्राइमरी है ना। तो उसी तरह से जो भगवान राम है अपनी जो प्रजा के सामने एक आधार उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसीलिए उनको ये, जैसे जब दशरथ महाराज हैं जब उनको राम को त्यागा गया तो उनको बहुत दुख हुआ ना, और दुख की वजह से उन्होंने कैकेयी पे चिल्लाया है ना, उसको धिक्कार किया, क्रोध व्यक्त किया है ना कि कैसी हो और ये तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो भगवान राम को भी वैसी पीड़ा हुई, लेकिन भगवान राम ने किसी को क्रोध नहीं किया, क्योंकि क्रोध करते तो प्रजा क्या बोलती, ये आसक्त है, पत्नी के वियोग में रो रहा। तो दशरथ महाराज ने तो कम से कम क्रोध व्यक्त किया, लेकिन भगवान राम तो क्रोध भी व्यक्त नहीं कर पाए, क्योंकि जो राजधर्म है उसको निभाना। तो लोग वो नहीं देखेंगे, एक सुपरफिशियल शास्त्र पढ़ते हैं और उससे धारणा निकालना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस तरह जैसे दशरथ महाराज ने राम को सजा नहीं दिया है ना, सजा देकर वनवास नहीं भेजा, उसी तरह जो राम है उन्होंने सीता को सजा दे के वनवास नहीं भेजा है ना, एज एक कर्तव्य को निभाने के लिए। फिर ये जो आरोप है कि स्त्रियों के प्रति अत्याचार हुआ, तो इसके लिए जो 16,000 राजकुमारियाँ उनके साथ विवाह किया, अब भगवान राम के ही हम रामायण में देख सकते हैं कि जब भगवान विवाह से पहले वशिष्ठ मुनि उनको ले जाते हैं, राम और लक्ष्मण को ले जाते हैं, तो एक जो झोपड़ी वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ पर जो अहिल्या है ना, जो पत्थर के रूप में है अहिल्या, तो एक तरह से तो उनके पति ने है ना जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ और त्याग कर दिया, पत्थर बना दिया, लेकिन भगवान राम ने उद्धार किया। अगर केवल वैदिक शास्त्रों में यही है कि जो स्त्री है उनका शोषण करना है, उनका अत्याचार करना है, तो भगवान राम ऐसा नहीं करते। फिर जो बाली का वध किया, जो बाली की पत्नी है तारा, उसको भी संरक्षण में रखा, उस सुग्रीव का राज उसके संरक्षण में रखा। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से अगर हम धारणा बना रहे हैं शास्त्रों को पढ़ के तो वो गलत है। फिर शास्त्रों को समझने का एक और तरीका है, ये उच्च स्तर है कि जो पूरी रामायण है उसमें किसकी प्रधानता है, करुण रस की प्रधानता है, कारुण्य है ना, करुण रस को उसकी प्रधानता दी गई। आप देखेंगे कुछ समय थोड़ा सा अच्छा रहता है, थोड़ा सा प्रसन्नता होती है, जैसे दशरथ महाराज हैं उनके पुत्र होते हैं वो प्रसन्न रहते हैं, और फिर राम के वनवास जाने का समय आता है, फिर राम वनवास जाते हैं, फिर चित्रकूट में रहते हैं कुछ समय, फिर सीता माँ का अपहरण हो जाता है, फिर रावण मर जाता है, सीता माँ मिल जाती हैं, कुछ समय रहते हैं कि सीता माँ को है ना बाहर कर। तो ये जो पूरी रामायण है वो उसमें करुण रस की प्रधानता, ये हमारे लिए शायद इतना समझ ना पाए, रिलेवेंट ना हो, लेकिन खैर बताने के लिए। तो एक होता है संयोग, होता है वियोग है ना, तो संयोग में जो प्रेम है और जो वियोग में प्रेम है, वियोग में प्रेम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसी तरह जो भगवान का अपने भक्तों के प्रति जो प्रेम है उसको बढ़ाने के लिए भी कभी कभी भगवान अपने भक्तों को अपने से अलग कर देते हैं, ये एक बहुत ही हायर उच्च उद्देश्य है कि कभी कभी अपने भक्तों को भी वो दूर कर देते हैं। तो इसलिए भी भगवान राम ने इस तरह से निर्णय किया। और भगवान राम ने देश निकाला नहीं किया। देश निकाला किसे बोलते हैं? अपनी राज्य की सीमा से बाहर निकाला। लेकिन भगवान राम ने अपने राज्य की सीमा से बाहर नहीं निकाला था। जो वाल्मीकि मुनि का आश्रम था वो उनकी राज्य की सीमा के अंदर ही था, और उन्होंने वाल्मीकि मुनि के आश्रम में उनको छोड़ा, जो लक्ष्मण उनके माध्यम से छोड़ा है ना। वहाँ और भी जो स्त्रियाँ थीं वो उनका देखभाल करती थी, उनके जो लवकुश पुत्र हुए उनका सब देखभाल करती। तो एक तरह से उनका जो दूसरा धर्म था भगवान रामचंद्र का, वो भी उन्होंने उसको पूरा किया। दोनों धर्म निभाए लेकिन उसका एक अलग अलग स्तर है। तो ये जो पूरा वृत्तांत है वो क्या है, जैसे मैंने बताया बार बार कि कैसे एक उच्च उद्देश्य के लिए भगवान राम ने सेक्रीफाइस किया, और जो सीता माँ है, सीता माँ वो भी समझ रहे हैं जैसे आप पढ़ेंगे इसमें कि जो भगवान रामचंद्र है उनके ऊपर ऐसी दुविधा है, अगर मैं इसमें बाधा बनूंगी तो वो भगवान जो उनके जो राजधर्म है उसके लिए सही नहीं है, इसीलिए मुझे चले जाना चाहिए। वो भी विरोध कर सकते थे। आजकल ऐसे ही है ना, कुछ भी प्रॉब्लम होती सब विरोध करते हैं, लेकिन वहाँ कोई विरोध नहीं कर रहा है, कोई प्रतिकार नहीं कर रहा है ना। तो इसीलिए हमको रामायण को इस तरह समझना चाहिए। और ये हम जब लीला पढ़ेंगे ना, तो ये क्या आनंद चिन्मय रस है ना। अगर ऐसी लीलाओं को हम सही तरह से सुनते हैं तो हमारा क्या होता है, शुद्धिकरण होता है, हमारे अंदर भी वो गुण आते हैं है ना। नहीं तो क्या है, ज़्यादातर वो शोषण और सेल्फिशनेस, स्वार्थ, ये ही सब लोगों में भरा हुआ है। लेकिन हम जब देखते हैं कि भगवान में ऐसा गुण है, भगवान के भक्तों में ऐसा गुण है, तो हमें भी इच्छा होती है कि यस उस गुण को हम भी इम्बाइव करें, हम भी उसको ग्रहण करें। तो इस तरह से समाप्त करेंगे। अभी किसी कोई प्रश्न है इससे संबंधित तो पूछ सकते हैं, या रामायण से संबंधित। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय।
प्रेमामृतामनिधि धीराधीर जन प्रियौ प्रियकरौ।